खुदावंद के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। और आज की इस खूबसूरत सुबह में आप सबको ग्रेस बाइबल चर्च में खुश आमदीद कहा जाता है। सो इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम में से सीखें, आए हम सब उस पाक यहोवा खुदा के हजूर झुकें जिसने आपको जिंदगी की सांसें आज बख्शी, कि उसके कलाम की सच्चाई से हकीकत को जाने और इस आरजी और तारीकी से पुर दुनिया में, इस बेवफा दुनिया में उस वफादार खुदा और यीशु मसीह के बारे में जाने। सो आए हम खुदा के हजूर उस खुदा का शुक्र करें। कादरे मुतले खुदा, आसमानी बाप यीशु मसीह में हमारे खुदा, तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे पाक रूह के लिए, आज के कलाम के लिए। आज हम जो कुछ भी सीखें, आज हम जो कुछ भी सुने तेरे कलाम में से हो, क्योंकि तूने अपने कलाम में कहा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना जरूर है कि तेरे बेटे यीशु मसीह का कलाम हो और सुनना मसीह के कलाम से। तो खुदावंद हम सबको सुनने वाले कान, समझने वाला दिल और कबूल करने वाली रूह बख्श, ताकि जो कुछ भी सीखें तेरा बेटा यीशु मसीह नाम इज्जत और जलाल पाए। उसी के पाक और मुकद्दस नाम में ये सब कुछ मांगते हैं, आमेन। सो जो बहन भाई कलामे खुदा पढ़ सकते हैं वो मेरे साथ निकालें नए अहदनामा में से, इफ़सियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका दो बाप, हम उसकी 5वीं आयत से पढ़ेंगे 10वीं आयत तक। और जो हिस्सा हम आज जिस पर गुफ्तगू करेंगे, जिस हिस्से में से हम सीखेंगे, वो आयत 8, 9 और 10 है। इन 3 आयतों का बहुत गहरा तअल्लुक है। और आप सब जानते हैं कि इफ़सियों के पहले 3 बाप ईमानदारों को, 3 पहले बाप जिसे चैप्टर कहा जाता है, हमें सिखाते हैं कि दर हकीकत हम कौन हैं। हमें बताते हैं कि दुनिया हमें क्या कहती है, लेकिन खुदा हमें क्या जानता है। दुनिया हमें बेशक हकीर, नाचीज, नकम्मे, बेवजूद, ठुकराए हुए, और इस दुनिया में लोग बहुत दफा कहते हैं कि हम नापाक हैं, लेकिन खुदा हमें कहता है कि तुम पाक हो, तुम नफरत के नहीं बल्कि मोहब्बत के लायक हो, तुम पहले दूर थे, अब मेरे बेटे के वसीला से मेरे दिल पसंद लोग हो। तुम पहले कुछ कौम, कोई कौम नहीं थे, लेकिन अब तुम मेरी मुकद्दस कौम हो। तुम्हें पहले कोई ताकत हासिल नहीं थी, लेकिन अब तुम्हें रूहुल कुद्दस की कुदरत हासिल है। सो पालूस रसूल इन तमाम उन बुनियादी बातों को, जैसे हम अपने बेटों और बेटियों को सिखाते हैं अपने घर में जब वो बड़े होते हैं, कि इस 4 दीवारी से बाहर हम ऐसे लोगों से मिलेंगे जो हमें, हमारा हौसला तोड़ेंगे, जो हमें नाचीज जानेंगे, वो हमें बहुत से नामों से पुकारेंगे, लेकिन तुम मेरे बेटे और बेटी, सच्चाई को मत भूलना। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो माँ बाप हैं अपने बेटों और बेटियों को ये बात सिखाते हैं कि आप मसीह यसू में कौन हैं। अगर नहीं तो आज से सिखाना शुरू कीजिए, देर नहीं है, वक्त नहीं गुजर गया, जितना गुजर गया है उसे भूलकर इस मौजूदा वक्त पर गौर करने की जरूरत है। सो हम 5वीं आयत से पढ़ेंगे। पालूस कहता है, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया, तुमको फजल ही से निजात मिली है। 6वीं आयत, और यीशु मसीह में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाया। ये हमारी हालत, हमारा मकाम, हमारा दर्जा, हमारी पहचान, हमारी शिनाख्त है खुदावन खुदा में, कि हम जिंदा हैं। हमें यीशु मसीह में शामिल करके आसमानी मकामों पर बिठाया गया है। और 7वीं आयत में, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से, खुदा बाप अपनी उस मेहरबानी से जो यीशु मसीह में हम पर है, आने वाले जमानों में अपने फजल की बेनहाय दौलत दिखाए। दौर आएगा जिसमें लोग देखेंगे और लोग रोएंगे, पीटेंगे, मारेंगे अपने आप को और पछताएंगे कि उन्होंने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी पर, ज़मीनी ज़िंदगी में कितने अजीम तोहफे को, उस बरकत को, उस फ़ज़ल को नाह की। और ये वो लोग होंगे जिन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया, जिन्होंने यीशु मसीह की बरकत को ठुकरा दिया, जिन्होंने यीशु मसीह जो नेमतों का मंबा है, जो ऐसा जरिया है जिसके वसीला से तमाम बरकतें जारी होती हैं, उसे रद्द किया। जो ऐसा वसीला है जो हमारी नाउम्मीदी में उम्मीद, हमारे दुखों में हमें हौसला, हमारी बीमारियों में हमें शिफा और बहुत दफा तसल्ली, हौसला, कुव्वत, ताकत देता है जब हम उसके लिए सताए जाते हैं। तो पालूस कहता है कि आने वाले दौर में, जमाने में अपने फजल की बेनहाय दौलत दिखाए। 8वीं आयत, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना ईमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे। क्योंकि हम उसकी कारागरी हैं, और यीशु मसीह में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। हमने कल 8वीं आयत में से देखा था कि हमको निजात मिली है ईमान के वसीला से, और ईमान किस पर? यीशु मसीह पर। और ये खुदा का फजल है कि उसने हमें निजात दी, रहाई दी, बख्शा, और ये बख्शिश और ये छुटकारा हमें किस बात से मिला? उस गुनाह से जो आदम के बायस तमाम नस्ल इंसानियत में आया, जिसके बारे में पालूस रोमियो 3:23 में कहता है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से, उसकी रफाकत से, उससे महरूम थे, उसकी नजात से महरूम थे। हम सब एक वक्त में खुदा से दूर थे, और आज वो तमाम लोग जो यीशु मसीह को कबूल नहीं करते, निजात दहिंदा, उसकी हकीकत पर यकीन नहीं करते कि वो ही वाहद है जिसने कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। जो लोग इस बात का इनकार करते हैं, जो लोग यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का इनकार करते हैं, जो लोग यीशु मसीह को खुदावंद नहीं मानते, वो अभी भी उसी हालत में हैं, गुनाह की हालत में, गुनाह की मंडी में बिके हुए। और ये गुनाह क्या है? खुदावंद का इनकार। ये गुनाह हरगिज नहीं कि उन्होंने झूठ बोला, या उन्होंने कम तोला, या उन्होंने कुछ ऐसा रवैया इख्तियार किया। तमाम गुनाहों का कफारा हो चुका है सवाए एक के, और वो क्या है? जो कोई यीशु मसीह का इनकार करता है वो दोजक में हमेशा की जिंदगी गुजारता है। 8वीं आयत में हमने सीखा था कि निजात, छुटकारा, रहाई, हमें खुदा तक ये पहुंच, ये तमाम बरकतें किस तरह मिली है? ये खुदा की बख्शिश है। बख्शिश का मतलब तोहफा, तोहफा, खुदा का रहम, खुदा की मेहरबानी, तोहफे के तौर पर खुदा ने हमें निजात दी, जिसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ईमान रखा। सो आज 9वीं आयत पर मैं चाहता हूं कि हम गौर करें, जिसके बारे में आज दुनिया भर में लोग शोशोपन में पड़े हुए हैं, जिसके बारे में बहुत से मसीही ईमानदार भी, बहुत से खादम, बहुत से खुदा के लोग इस आयत पर आकर कहते हैं कि नहीं, हमें कुछ करने की जरूरत है, हमें अच्छे ईमाल करने की ज़रूरत है, हमें इंसानी नेकियां करने की ज़रूरत है। लेकिन जो हकीकत वो भूल जाते हैं या जिससे वो दूर रह जाते हैं, वो ये है, आज हम देखेंगे 9वीं आयत में। यहाँ पर पालूस कहता है कि निजात तुम्हें मिली है खुदा के फजल से, तुम्हारे काम से नहीं। लेकिन आज लोग निजात हासिल करना चाहते हैं कुछ करके, कि मैं अगर कुछ करूंगा तो खुदा मुझे निजात देगा, हमेशा की जिंदगी का आराम देगा, जिसे कह सकते हैं कि हमें वो फिरदौस में जगा देगा। आज बहुत से लोग, आज बहुत से अदियान, बहुत से मजहब के लोग इस बात में पड़े हुए हैं कि हमें कुछ करना चाहिए ताकि हम निजात हासिल करें, लेकिन यहाँ पर पालूस वाजिया कर देता है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से, फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, हमारी तरफ से नहीं, खुदा की तरफ से। और नामी आयत में वो बयान करता है क्यों, क्योंकि वो नामी आयत में सच को फाश कर देता है, और ना ईमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे, ताकि कोई फख्र ना करे, ताकि कोई अपने आप में ये ना कहे कि मैंने ये काम किया है, मेरी बदौलत, मेरे अच्छे कामों की बदौलत। सो काम, ईमाल, नेकियां हमें निजात नहीं दे सकती। यहां पर जो भेद, वो आज हम सीखने जा रहे हैं कि ये वो काम है जो लोग करना चाहते हैं निजात हासिल करने के लिए। मेरे साथ एक हवाला देखें कि खुदा का बंदा पालूस रसूल इस बात को वाजिया पर तौर पर बयान करता है कि कोई भी ईमाल के सबब से रासबाज, रासबाज नहीं ठहर सकता। रासबाज का मतलब यानी कि पाक ठहरना, यानी कि बगैर किसी गुनाह के। जब हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो हम खुदा की अदालत में रासबाज ठहरते हैं, क्योंकि यीशु मसीह की रासबाजी हमें हमारे नाम लगा दी गई। रोमियो 3 बाप उसकी 20 आयत मेरे साथ निकालें। यहां पर पालूस रसूल उन तमाम लोगों को बयान करता है कि कोई भी रासबाज नहीं, कोई भी समझदार नहीं, कोई भी ऐसा शख्स नहीं है, सब गुमराह के गुमराह हैं, सब खोए हुए हैं, क्योंकि वो अपने कामों पर फख्र करते हैं, अपने ईमाल पर भरोसा करते हैं, अपनी नेकियों पर तकब्बर करते हैं। और ये बात हम पूरे पुराने अहदनामा में देखते हैं कि लोग कुर्बानी पर कुर्बानी, चढ़ावे पर चढ़ा चढ़ाहे चरवाहे चढ़ावे पर चढ़ावा दे रहे हैं, मुख्तलिफ कुर्बानियाँ, सोखनी कुर्बानियाँ, दूसरी कुर्बानियाँ वो खुदा के हजूर पेश कर रहे हैं ताकि खुदा को पसंद आ जाए। लेकिन खुदा चाहता है कि वो एक सबक सीखें कि तुम कभी भी इस काबिल नहीं होगे कि मुझे पसंद आओ अपने उन कामों के सबब से जो गंदे नापाक लबास की मानद हैं। हम इंसान अपने आप से रासबाजी पैदा नहीं कर सकते, इसीलिए पालूस रोमियो 3 बाप उसकी 20वीं आयत में कहता है, क्योंकि शरीयत के इमाल से कोई बशर उसके हजूर, किसके, खुदावंद खुदा के हजूर रासबाज नहीं ठहरेगा। शरीयत के सबब से, शरीयत क्या है, करो ये करो वो करो, ये ना करो, ये पहनो वो पहनो, इस दिन को पाक मानो ये दिन को पाक ना मानो, ये हुक्म मानोगे तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। आज दुनिया इसी बात में मगन है, करना ना करना, इस पर वो अपनी रासबाजी को मुकद्दियस मुकद्दसियस मुकद्दस होने को क्या करते हैं, मनहसर करते हैं कि अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हम पाक हैं। और ये किस लिए है, वो निजात हासिल करना चाहते हैं। बाइबल हरगिज नहीं कहती कि हम नेक काम ना करें, आगे चलकर हम देखेंगे यही वो बड़ा भेद है, यही वो बड़ी क्या कहते हैं मुसीबत है, जिसे बहुत से लोग नहीं समझते। लोग निजात हासिल करने के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन खुदा कहता है निजात तोहफा है, उसके बाद वो तमाम काम करो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। सो 20वीं आयत, क्योंकि शरीयत के इमाल से कोई बशर, कोई भी शख्स उसके हजूर, खुदावन खुदा के हजूर रासबाज नहीं ठहरेगा, क्योंकि क्या लिखा है, इसलिए कि शरीयत के वसीला से तो गुनाह की पहचान, शरीयत के वसीला से तो गुनाह की पहचान ही होती है, शरीयत ही हमें बताती है गलत क्या है, दुरुस्त क्या है। मेरे साथ एक और हवाला देखें, 27वीं और 28वीं आयत, वो लोग जो अपने कामों पर, नेकियों पर फख्र करते हैं। 27वीं आयत, पस फखर कहाँ रहा। पालूस सवाल पूछता है, फखर कहाँ रहा। इसकी गुंजाइश ही नहीं, कौन सी शरीयत के सबब से? क्या ईमाल की शरीयत के सबब से? नहीं, कौन सी शरीयत के सबब से? ईमाल की शरीयत के सबब से नहीं, बल्कि ईमान की शरीयत से। ईमान की शरीयत क्या है? यकीन कर लेना कि मैं नापाक हूं और खुदावंद पाक है, और बगैर उसके उसकी पाकीजगी के मैं पाक नहीं ठहर सकता। मेरे साथ एक और हवाला देखें, इसी किताब में, इसी खत में, रोमियो 4 बाप उसकी पहली 2 आयात। यहां पर इब्राहिम के बारे में बात की जा रही है। पस पस हम क्या कहें कि हमारा जिस्मानी बाप इब्राहिम, हमारे जिस्मानी बाप इब्राहिम को क्या हासिल हुआ? पालूस यहां पर सवाल करता है कि पस हम क्या कहें कि क्या हमारे जिस्मानी बाप इब्राहिम को क्या हासिल हुआ उन तमाम कामों के बायस। तो क्या कहता है दूसरी आयत में? क्योंकि अगर इब्राहिम इमाल से रासबाज ठहरता या ठहराया जाता, तो उसको फखर की जगह होती, लेकिन खुदा के नजदीक नहीं। इब्राहिम ने कभी भी तकब्बर नहीं किया, फखर नहीं किया, अपने आप पर भरोसा नहीं किया कि उसने जो कुछ किया है इसलिए किया कि उससे निजात मिली। जब हम पदेश 22वें बाब को देखते हैं, तो वहां पर लिखा है कि इब्राहिम ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। इसलिए पालूस कहता है, ना ईमाल के सबब से, ताकि कोई फखर ना करे। निजात ईमाल के पास नहीं है, बल्कि खुदा के फजल से है, ना हमारी नेकियों से है। जैसे आज बहुत दफा लोग कहते हैं कि अगर तुम किसी भूखे को पानी पिलाओगे तो तुम्हें निजात मिल जाएगी। नहीं, पालूस यहां पर कहता है, ना ईमाल के सबब से है ताकि कोई फखर ना करे। निजात ईमाल के सबब से नहीं, किसी नेकी के सबब से नहीं, किसी चढ़वाहे के सबब से नहीं, किसी कुर्बानी के सबब से नहीं, ज्यादा हदिया देने के सबब से नहीं, ज्यादा दुआ करने के सबब से नहीं, चर्च में सुबह या शाम आने से नहीं। निजात हमें मिलती है सिर्फ एक अमल से, तुमको ईमान के वसीला से। ये यकीन कर लेना कि यीशु मसीह ने सलीब पर निजात का काम मुकम्मल किया, और जो कोई उस पर ईमान लाता है वो हलाक नहीं होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा, हमेशा की जिंदगी पाएगा। और ये हमेशा की जिंदगी यीशु मसीह में है। इसलिए 9वीं आयत का कहने का मतलब यही है कि निजात हमें ईमान से नहीं, बल्कि ईमान से मिली है। और 10वीं आयत में हम कल सीखेंगे कि वो कौन से काम है जो हमें करने की जरूरत है, क्योंकि इंसानी नेकी, इंसानी काम क्या है? मुर्दा है। इब्रानियों 6 बाप उसकी पहली आयत, हम जितने काम अपनी ताकत से करेंगे वो सब मुर्दा है, लेकिन जो कुछ हम खुदा की ताकत में करेंगे वो उसके हजूर मकबूल ठहरेंगे। आए हम खुदा के हजूर झुकें और इस बात को कभी ना भूलें, इस बात को दूसरों तक पहुंचाएं कि निजात बजरिया, निजात ईमान के वसीला से है। और ईमान किस पर? किसी लकड़ी पर, पंखे पर, दीवार पर या कब्र पर नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह पर। और यीशु मसीह ने कहा है, पालूस रसूल ने भी कहा है, कि जो कोई ये इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद खुदा है, वो निजात पाएगा। रोमियो 10 बाप। आए हम खुदा के जुड़ चुके हैं। खुदा बाप, आज के कलाम के वसीला से सबको बड़ी बरकत दे, और तेरे शुक्र गुजार हैं कि हम निजात ना कमा सकते थे अपने अच्छे कामों से, और ना ही निजात हम खो सकते हैं किसी ऐसे काम से जो हम से सरजद हो। निजात की हमेशा की जिंदगी के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। सबको छू बड़ी बरकत दे, यस्सु के नाम में, आमेन।